ಓಮಜ್ಞಾನತಿರಂಧಶನಂಜನಶಲಾಕೇಶಕ್ಷ್ಮಿತ್ರೀ ಗುರುವೀ ನಮಃ ಶ್ರೀಚೈತನ್ಯ ಮನವೇಷ್ಟಮ ಸ್ಥಾಪಿತ ಜನಭೂತಲೆ ಸ್ವಯಂ ರೂಪ ಕದಾಮಯಂ ತದಾತಿ ಉದಾತಿ ಶುಭಕಾಂತಿಕಂ ವಂದೇ ಅಹಂ ಶ್ರೀಗುರು ಶ್ರೀಯತುಪದಮೂಲಂ ಶ್ರೀಗುರುನ್ ವೈಷ್ಣವಂ ಚ ಶ್ರೀರೂಪಂ ಸಾಗ್ರಜಾತಂ ಸಹಗಣರಗಣತಮಿತಂ ತಂ ಸಜೀವಂ ಸಾಧೂತಂ ಸವಧೂತಂ ಪರಿಜನಸಂಹಿತಂ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ದೇವಂ ಶ್ರಾಧಾ ಕೃಷ್ಣ ಪದಾನ್ ಸಹಗಣ ಲಲಿತಾ ಶ್ರೀಷ್ಣಿತಂ ಚ ನಮೋ ವಿಷ್ಣು ಪಾದಾಯ ಕೃಷ್ಣ ಪೃಷ್ಠಾಯ ಭೂತಲೆ ಶ್ರೀಮತಿ ಭಕ್ತಿವೇದಾಂತೋ ಸ್ವಾಮಿ ನಿತ್ಯ ನಾಮಿನಿ ನಮಸ್ತೆ ಸರಸ್ವತಿ ದೇವೇ ಗೌರವಾಣಿ ಪ್ರಚಾರಿಣಿ ನಿರ್ವಿಶೇಷ ಶೂನ್ಯವಾದಿ ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ದೇಶತಾನಿ ವಂಶಾಕಲ್ಪತರು ಹಚ್ಚ ಕೃಪಾ ಸಂದೇವ ಚ ಪತಿತಾನಂ ಪಾವನ ವೈಷ್ಣವೇ ಭೂವನ ನಮೋ ಮಹಾವದನ್ಯ ಕೃಷ್ಣ ಪ್ರೇಮ ಪದಯತೆ ಕೃಷ್ಣಯ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ನಾಮ್ನೇ ಗೌರತೀಶಿನ ಪಂಚತತ್ತಾತ್ಮಕಂ ಕೃಷ್ಣ ಭಕ್ತರೂಪ ಷಡಪಕಂ ಭಕ್ತಾವತರಣ ಭಕ್ತಕ್ಷಂ ನಮಂ ಭಕ್ತಶಕ್ತಂ ಹೇ ಕೃಷ್ಣ ಕರುಣಾ ಸಿಂಧೋ ದೀನಬಂಧು ಜಗತ್ಪತೆ ಗೋಪೀಶ ಗೋಪಿಯಕಂತ ರಾಧಾಕಂತ ನಮಸ್ತುತೆ ತಪ್ತ ಕಾಂಚನ ಗೌರಂಗೆ ರಾಧೇ ವೃಂದಾವನೇಶ್ವರಿ ವಿಶ್ವಭಾನುಸುತ ದೇವಿ ಪ್ರಣಾಮಿ ಹರಿತೆ ಜಯ ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯನಂದ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸದಿ ಗೌರವ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ 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 ಹರೇ ಹರಿ ಹರೇ ರಾಮ 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 ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಸ್ಕೆ ಪ್ರಾತಕಾಲೀನ ಸತ್ರ ಮೇ ಸಬ್ಕೆ ಹಾರ್ದಿಕ ಸ್ವಾಗತ ಹಾಂ ಸಬ್ಸೆ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಹೈ ಆಪ್ ಲೋಗ ಕೃಪಾ ಕೀಜಿಯೇ ಹಮ್ ಆಜ ಮಹಾಭಾಗವತ ಶ್ರೀ ನರೋತ್ತಮ ದಾಸ್ ಠಾಕುರ್ ಕೆ ಬಾರೇ ಮೇ ಹಮ್ ಲೋಗ ಸುನೆಂಗೆ ಕಿ ಯೇ ಕೋಯಿ ಸಾಧಾರಣ ಮನುಷ್ಯ ನಹೀ ಹೈ ಯೇ ತೀನೋ ಪುರುಷ ತೀನೋ ಮಹಾಪುರುಷ ಹೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸಾಚಾರ್ಯ ನರೋತ್ತಮ ಔರ್ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕಾ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಹೈ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕಿ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ನರೋತ್ತಮ ಹೈ ಔರ್ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಕಿ ಜೋ ಹೈ ಯೇ ಆವೇಶ ಅವತಾರ ಹೈ ಯೇ ಹೈ ಶ್ಯಾಮಾನಂದ ಪ್ರಭು ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ಭಂಡಾರಿ ಹೈ ಇನ್ಕೆ ಮಹಾಪ್ರಭು ಆನೆ ಕೇ ಕಾರಣ ಆಚಾರ್ಯ ಬತಾತೆ ಹೈ ಕಿ ಆಚಾರ್ಯ ನೆ ಬುಲಾಯೆ ಹೈ ಔರ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಉನ್ಕೊ ಪ್ರೇಮ ಕಿ ಭಂಡಾರಿ ಬನಾಯೆ ಥೆ ಮತಲಬ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಔರ್ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಕೈಸೆ ಪ್ರಚಾರ ಕರೆಂಗಿ ಯೇ ಅದ್ವೈತ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಪ್ಲಾನ್ ಕೆ ಅನುಸಾರ ತೋ ಉನ್ಹೊನೆ ವಿಚಾರ ಕಿಯಾ ಕಿ ಜಬ್ ಚೈತನ್ಯ ಮಹಾಪ್ರಭು ಚಲೆ ಜಾಯೆಂಗೆ ನಿತ್ಯಾನಂದ ಪ್ರಭು ಚಲೇ ಜಾಯೆಂಗೆ ಉನ್ಕೆ ಶಾಶ್ವತ ಪ್ರೇಮ ಭೀ ಚಲಾ ಜಾಯೆಗಾ ಪ್ರೇಮ ಭೀ ಚಲೇ ಪ್ರೇಮ ಭೀ ನಹೀ ರಹೇಗಾ ತಬ ಆಚಾರ್ಯ ಕೆ ಮನ ಮೇ ಇಚ್ಛಾ ಹುಯಿ ಕಿ ಪ್ರೇಮ ಕೋ ಔರ್ ಕುಛ ದಿನ ರಖನಾ ಹೈ ಧರ್ತಿ ಮೇ ತೋ ಕೈಸೆ ಕ್ಯಾ ಕರನಾ ಹೈ ಭಕ್ತೋ ಜೋ ಹೋತಾ ಹೈ ಪ್ರೇಮಿ ಭಕ್ತೋ ಉಲ್ಟಾ ಹೀ ಕಾರ್ಯ ಕರ್ತಾ ಹೈ ತೋ ಆಚಾರ್ಯ ಫೇರ್ ಮಾಯಾವಾದ ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಶುರು ಕರ್ ದಿಯಾ ತು ಜಗನ್ನಾಥಪುರಿ ಮೇ ಮಹಾಪ್ರಭು ಕೋ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಕಿಯಾ ಲೋಗ ಜಾಕೆ ಶಿಕಾಯತ್ ಕಿಯೆ ಹೈ ಕಿ ಪ್ರಭು ಆಚಾರ್ಯ ಫೇರ್ ಮಾಯಾವಾದ ಕೆ ಪ್ರಚಾರ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ತಬ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸಮಜ್ ಗಯೆ ಕ್ಯೂ ಕರ್ ರಹೆ ಹೈ ತಬ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಪ್ರೇಮ ಪ್ರಕಟ ಕರ್ಕೆ ಧರ್ತಿ ಮೇ ರಖಾ ಥಾ ಧರ್ತಿ ಹಿಲ್ ರಹೆ ಥೆ ಸಮುದ್ರ ಮೇ ರಖಾ ಥಾ ಉಸ್ಮೇ ಬಾಡ್ ಆ ರಹಾ ಥಾ ತೋ ಬಾದ್ ಮೇ ಉಸ್ಕೋ ಬೋಲ ಧರ್ತಿ ಕೋ ಫೇರ್ ಬೋಲೆ ಕಿ ಥೋಡಾ ಶಾಂತ ಹೋಕೆ ರಹೋ ಯೇ ಶ್ರೀನಿವಾಸ ಆಚಾರ್ಯ ಹೈ ಔರ್ ಜಬ್ ಮಹಾಪ್ರಭು ಸನ್ಯಾಸ ಲೇನೆ ಕೆ ಪಾಂಚ್ ಸಾಲ್ ಬಾದ್ ಬಂಗಾಲ್ ಹೋಕರ್ ವೃಂದಾವನ್ ಆನೆ ಚಾಹ ರಹೆ ಥೆ ಇಸಿ ಸಮಯ ಕಾನಾಯ ನಟ್ಸಲಾ ತಕ್ ಪಹುಂಚೆ ಸನಾತನ ಗೋಸ್ವಾಮಿ ಜಿ ಪಹಲೇ ಹೀ ಬತಾ ದಿಯೆ ಥೆ ಕಿ ಪ್ರಭು ಜಿಸ್ಕೆ ಸಾಥ ಲಾಖೋ ಕರೋಡೋ ಲೋಗ ಹೈ ಲಾಖ ಹೈ ಕರೋಡೋ ಹೈ ಕೋಯಿ ಲಾಖ ಲೋಗ ಹೈ ಸನಾತನ ಜಿ ಬೋಲೆ ಕಿ ವೃಂದಾವನ್ ಜಾನೆ ಕಾ ಯೇ ಪರಿಪಾಟಿ ನಹೀ ಹೈ ತಬ ಮಹಾಪ್ರಭು ಫಿರ್ ಭೀ ಗಯೆ ಕನೈ ನಟ್ಸಲಾ ತಕ್ कीर्तन करते भाव विभोर होकर महाप्रभु मूर्छित हो गए, और किसी भी बहुत ही कीर्तन करने के बाद महाप्रभु दोबारा चेतना में नहीं आ रहे थे, भाव समाधि में है। तब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथ जगन्नाथ बोले कान में, इसी समय महाप्रभु उठे और नरतम नरतम बोल के पुकारे दो तीन बार। तभी सभी लोग देखने लगे, एक दूसरे को देखने लगे, नरतम तो कोई है नहीं है, नरतम नाम के कोई इधर नहीं है, किसको महाप्रभु बोल रहे हैं। तब महाप्रभु उठे और बोले मैं आज वृंदावन नहीं जाऊंगा, जगन्नाथपुरी जाऊंगा, लेट रिटर्न जाऊंगा। और रिटर्न गए, लेकिन वो नीचे चले गए, पूर्व दिशा में चले गए, बोला गड़ेरा हाट, गड़ेरा हाट मैं जाऊंगा। गए नित्यानंद प्रभु को बोले कि देखो नित्यानंद श्रीपाद, ये स्थान बहुत सुंदर है, रहने का इच्छा करते हैं, और ये बहुत पवित्र स्थान है, मतलब भक्तों प्रकट होने से पहले ये स्थान पवित्र है, महाभगवत प्रकट होने से पहले ही महाप्रभु का मन रम रहा था उसी स्थान में। महाप्रभु बोलते मन, मेरे मन में ऐसे ही लग रहा है कि मैं यहाँ पे रहूं। तब नित्यानंद प्रभु से महाप्रभु कहे कि देखो जब जगन्नाथपुरी हम लोग जा रहे थे, आप लोग जो रोया था, नित्यानंद को बोलते हैं आपकी जो आंखों की जल है, ये जल नहीं है, ये प्रेम है, मैंने इकट्ठा करके रखा हूँ और उसी से प्रेम जन्म कराना चाहता हूँ, तो किसको दोगे? बोला नरोत्तम के दो। नरोत्तम कौन है? अभी है नहीं, अभी इसलिए मैं पद्मा में प्रेम रख रहा हूँ, पद्मा में प्रेम, पद्मा नदी में प्रेम रख रहा हूँ, जब नरोत्तम आएगा उसको दे देगा। प्रेम जब रखे, ऐसे महाप्रभु आए थे तो जाने मान लीजिए माघ फागुन महीना में, तो उसमें तुरंत बार आ गया जब भी प्रेम महाप्रभु रखे पद्मा नदी में। अभी भी स्थान है, तमल वृक्ष है, प्रेम तली, महाप्रभु जो चर्चा किए थे बैठे थे तो प्रेम तली तमल वृक्ष है। बंगाल की एक खासियत है, क्या है, आप जाओगे यहाँ पे यूपी में कोई तमल नहीं मिलेगा, बिहार में तमल नहीं मिलेगा, जब बंगाल जाओगे हर जगह तमल मिलेगा आपको। आप आदित्य आचार्य के जन्म स्थल में जाओ, कहीं पे जाओ, अभी हम नित्यानंद प्रभु जहाँ कुंडल रखे थे विशाल तमल वृक्ष है, तो तमल वृक्ष अभी भी है, प्रेम तली उसको बोलते हैं, प्रेम, वहाँ पे महाप्रभु बैठे थे और उसी पद्मा जी बिल्कुल निकट थे, उधर प्रेम रखे। तो इसके बाद इनके जन्म जो है, उनके पिताजी पुत्र के लिए नारायण की आराधना किए, तो उनकी पत्नी के नाम थे नारायणी और उनके गर्भ संचार हुई। शुभ लक्षण में माघ पूर्णिमा के दिन नरोत्तम दास ठाकुर प्रकट हुए, बहुत ही, और कोई पुत्र संतान पुत्र पुत्री कोई भी नहीं थे, तो बहुत ही आनंद उत्सव, 8 दिन तक आनंद उत्सव चलते रहा। फिर जब बारी आए कि अन्न प्राशन, इधर हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, पहले दिन अन्न खिलाते हैं, अन्नप्राशन बोलते हैं, अन्नप्राशन, तो अन्नप्राशन के दिन बहुत विशाल महोत्सव के आयोजन किया, मतलब फेस्टिवल मनाए। समस्या ये हो गया, बच्चे के जब खीर ला के खिलाने जा रहे, कोई खीर खा ही नहीं रहे, कितनी बार प्रयास किया तो मुंह घुमा लेते हैं, फिर देते हैं मुंह घुमा लेते हैं, लेते ही नहीं है। तो इतनी बड़ी फेस्टिवल जिसके लिए है, बच्चे कुछ भी खाने चाहता है, छोटा बच्चा जब होता है ना, कुछ भी मिलता है तो मुख में डाल देते हैं, लेकिन ये ऐसे है, ये अन्न प्राशन के दिन वो अन्न खा ही नहीं रहे। तभी कोई एक भक्त टाइप के व्यक्ति है, उन्होंने कहा कि इसको महाप्रसाद दे दो लखे, महाप्रसाद ये तो तुरंत। तभी उनके पिताजी बोले कि इनको महाप्रसाद कलवा कुछ देना ही नहीं है, कितने भगवान हैं, जन्म से ही नित्य सिद्ध परिकर है। तो तब से बड़े होने लगे, पढ़े स्कूल में एडमिशन लिए, जल्दी जल्दी पढ़ाई लिखाई की, लेकिन क्या है, विषय से बहुत उदास थे।
तो 12 साल जब हो गया, पिता माता सोचे कि विवाह की व्यवस्था करे,
तब इधर नित्यानंद पुरुष स्वप्न में आके बोला कि देखो विवाह करने से जंजाल में फंसोगे, अभी निकलो,
और तुम्हारा लिए महापुरुष ने प्रेम रखा है, पद्मा नदी में आपके लिए प्रेम रखा है, आप उसे प्रेम प्राप्त करो, रिसीव करो प्रेम।
पद्मा जी पूछी थी कि क्या मुझे कैसे पता लगे कौन नर्तम है।
तो बोले कोई भी व्यक्ति तुम्हें प्रवेश करने के बाद तुम्हारे शरीर में जैसे विकार रोमांचित हो जाओगे तो समझो कि यही नर्तम है।
तो नित्यानंद प्रभु बोले, और उनके एक गौरी वैष्णव भी थे, उनके पास जाकर कथा सुनते थे, गौर नित्यानंद की कथा सुनते थे। तभी उनके मन में व्याकुलता हुई और सुबह सुबह उठे, ब्रह्म मुहूर्त उठा और गए, थोड़ा दूर होगा उनके घर से, एक देश एक कोस लगभग दूर होगा, पद्मा नदी, और गए। जब ही प्रवेश किए तो उनके पद्मा नदी को पता चल गया कि ये नर्तम है। तभी उन्होंने प्रेम उनको दिए, तब बोला प्रेम देवी रूप में आ गई और प्रेम दिए, और बोला भाई प्रेम कहाँ पे लूँ, तो बोले हाथ पे लेके पी जाओ। तो पी जब ही प्रेम पी गए तो प्रेम साक्षात प्रेम है, और नित्यानंद प्रभु महाप्रभु रखे हैं उनके लिए प्रेम, नित्यानंद की अश्रु। तो पीने के साथ साथ ही उनके प्रेम विकारित हो गए, जैसे होते हैं ना दवाई जहर पी जाए तुरंत एक्शन करते हैं, ऐसे प्रेम पिए तो तुरंत एक्शन कर दिए, मूर्छित होके गिर पड़े, तट में आके गिर पड़े, और उनका रंग कहा श्यामला रंग के थे, प्रेम पीते ही तुरंत उनका शरीर का रंग भी बदल गया, और प्रेम में बिहोल कभी नित्य करते, कभी रोमांचित होते, कभी आनंदित होते, कभी रोते हैं, ऐसे प्रेम में प्रेम भाव में कीर्तन करते रहे, मूर्छित हो गिर के पड़ा रहे। तो घर से माता जी जब देखी, माता जी की एकदम प्राण जैसे है, नर्तम को एकदम हमेशा एक नजर नहीं देखने से वो स्थिर नहीं रह सकती थी। जब देखे नर्तम है नीरम, तभी ढूंढने लगे, इधर ढूंढे उधर ढूंढे, बहुत सा ढूंढते ढूंढते कोई मिले कि वो पद्मा नदी के तट पे एक लड़के अस्थिर, कभी रो रहा है कभी नाच रहा है, ऐसे है, आके देखे, आने के बाद पहचान नहीं पा रहे, अपने बेटा है लेकिन रूप तो ऐसे ही, लेकिन रंग परिवर्तन हो गया, रंग परिवर्तन हो गया। तब उसे जब भी बेकुल हो रही थी बहुत ज्यादा, तब नर्तम बोला मैं ही नर्तम हूं। तभी उन्हें आलिंगन किए और बोले मुझे बहुत भूख लगा। बोले कैसे हुआ, क्यों आया, क्यों अकेला तू आ गया ऐसे छोड़ के, कोई भूत भूत कुछ शक्ति लग गया होगा। तो ऐसे ही तो बोले क्या हुआ बोल। बोला नहीं मुझे बहुत भूख लगी है, अब मुझे खिलाओ उसके बाद मैं बताऊंगा। तब घर आए, तब बताए, इसके बाद तब से अस्थिर रहते हैं, पागल जैसे हमेशा, कभी कभी घर से बाहर दौड़ के निकल जाते, आके गिर पड़ते हैं, रोमांचित गौरंग नित्यानंद और भागना चाहते हैं। इसी प्रकार बहुत वैद्य लोग आए, झाड़ने फूकने वाले आ गए, आके बोलते हैं शिवाघृत, जो शियर है, जो उसको क्या बोलते हैं, गेदर, गेदर की मारकर उसे घी बनाना है, तो उसको लगाने से ठीक हो जाएगा, तो उसे मालिश करने से, इसका सिर पे सिर वगैरह में तेल लगाने से वो ठीक हो जाएगा इनका। तो ऐसे जब कहे तो वो लोग ऐसे व्यवस्था करने लगे कि कहाँ से ऐसे गेदर को लाए और मारे। नर्तम जी कहा कि मुझे ठीक करने के लिए किसी पशु को मारोगे, ये बीमार ठीक नहीं होने वाला और ज्यादा होगा। तभी ऐसे ही रहे, स्थिर नहीं है, माता की बहुत चिंता हुई। तो एक बार एक सरकार, मुस्लिम सरकार उनको बुलाए, माता जाने नहीं देने चाह रही थी, फिर भी बहुत सिक्योरिटी के साथ उनको भेजे और गए। तो उसी समय
नृत्यम देखे कि बहुत अच्छी चांस है, रात को उठे और भाग गए। जब सुबह खबर मिला, नारायणी को तुरंत मूर्छित हो गई। वो सोच ही रही थी कि कहाँ कैसे मैं अकेले उनको छोड़ सकती हूँ, लेकिन छोड़ दे, देखो सर्वनाश अनार्थ हो ही गया है। तभी बोले कि इतने इनाम दूंगा मैं, दूंगी मैं, आप किसी भी हालत से उनके वापस लाओ। घोड़ा में चढ़ के चारों ओर से देखे, नरोत्तम दास ठाकुर को मिले, लेकिन वो वापस नहीं आए हैं। वो माता सोच रही थी कि इतनी अच्छा से मैं उनको लालन पालन किए हैं, कैसे वो चलेंगे नंगा पैर में, कैसी धूप, किसको भूख भूख लगेगा, तो किसको मांग के खाएंगे वो। ऐसे माँ की हृदय है, वो सोचती रहती है इस बच्चे के बारे में। तो लेकिन नरोत्तम वापस नहीं, चलते रहे, कभी ऐसे अभ्यास नहीं किए हैं। हम लोग 22 किलोमीटर चलने से गोवर्धन परिक्रमा करके कितना तकलीफ होते हैं। तो ऐसे वृंदावन है 2000 किलोमीटर लगभग बांग्लादेश में है, तो देहर तूपारी है, रोड भी नहीं है, जंगल की मार्ग झारखंड की ओर से होके आना है। तो ऐसे चलते चलते बहुत थक गए और जो है उनमें फुफला पड़ गए, छाला पड़ गया, चल ही नहीं पा रहा है। तो आपको मन में तो इच्छा है, लेकिन शरीर की परिस्थितियाँ कभी ऐसे हो जाता है, चल ही नहीं पाते हैं। तो नरोत्तम दास के मन में बहुत दुख हुई कि मैं कैसे जाऊँ, मैं शायद जा नहीं पाऊँगा। ऐसे करके वृक्ष के नीचे सो गए। इनकी स्थिति इतने निष्काम प्रयास को देखकर महापुरुष से रहा नहीं गया। महापुरुष एक लोटा दूध लेके आए और बोले, नरोत्तम बहुत इतनी आप जानते थका है तो कितना नींद आती है, तो ऐसे सो गए। महापुरुष आके बोले, पुकारे, नरोत्तम उठो, इस दूध पी लो, तुम्हारा सभी तबीयत जो ठीक हो जाएगा, तुम्हारा जो शरीर की दर्द हुआ है ये भी ठीक हो जाएगा, जो तुम्हारा छाला पड़ गया सब कुछ ठीक हो जाएगा, तुम उठो। लेकिन इतने थक गए थे उठे नहीं। तब दोनों भाई आ गए, शिवरूप और सनातन आगे दिव्य, उनके शरीर के बारे में वर्णन किया, दिव्य तिलक उनकी इसी दिव्य शरीर में आकर पुकारने लगे, नरोत्तम नरोत्तम उठो, तुम इतना सो रहे हो, महापुरुष स्वयं आए थे दूध लेके, तुम भूल गए, तुम भी फिर भी सो रहे थे। इसी प्रकार उठे, उठने के बाद तो रूप सनातन बोले कि इस दूध पी लो, महापुरुष के द्वारा दूध लाया हुआ है और तुम्हारा तबीयत ठीक हो गया। ऐसे करके दोनों चले गए सपनों जैसे। तो उठे और दूध देखे, रूप सनातन है नहीं, बहुत रोए। तभी दूध उनके पास में एक लोटा दूध मिला, दूध पी लिए तो उनकी तबीयत ठीक हो गया। तो नरोत्तम रोते रोते आने लगे, कुछ गौड़ देश के लोग आते रहे, वो लोग बोले, भैया चलो, रोते क्यों इतना। तो जब ही चलते चलते वृंदावन के पहुंचे, आकर विश्राम घाट में स्नान किए, केशव जी जन्मस्थान आदि कोई कोई स्थान में दर्शन किए। दर्शन करके उन्होंने उधर ही खबर मिल गए कि रूप सनातन नहीं है। पहले नरोत्तम दास ठाकुर जब प्रकट हुए तब महापुरुष भी थे, लेकिन कुछ दिन बाद महापुरुष चले गए। तो रूप सनातन से मिलने का अच्छा हुई, रूप सनातन आते पहुंचते पहुंचते रूप सनातन भी नहीं है। बहुत दुखी हो गया, विश्राम घाट में स्नान करके वहीं पे गिर पड़ा और रोने लगे, मैं क्या करूं, रूप सनातन नहीं है इस शरीर से, किसके शिक्षा, किससे क्या करूं, किस आश्रम में मैं रहूं। वृंदावन वासी जतो वैष्णवेर गान प्रथमे वंदन करी सवरोचरण। ये रूप और सनातन वैष्णव है, जितने महापुरुष बोले थे कथा करूंगी अमर मोर भक्त गणे वृंदावने गेले गेले तारी कोरी हो पालने बोला करूंगिया ये कमंडल लिए हुआ छोरा फाटा गुदड़ी लिए हुआ मेरे कंगाल भक्तों को वृंदावन जाने से अब रक्षा करना, अब देखभाल करना, पोषण करना उसकी। तो इसलिए ये दोनों नहीं है, रूप ना रूप है ना सनातन है। बड़े दुख हो गए, दुखी हो गया। वो बोले कि नहीं जाऊंगा नहीं। इधर रूप सनातन शिव गोस्वामी के स्वप्न में आके बताए कि देखो नरताम आए हैं, वो केशी घाट वो विश्राम घाट पे है, तुम लोग भेजो और जाके उनको लेके आओ। तभी जाके जीव गोस्वामी ने लोग भेज दिए, गए और जाके देखे उधर पड़ा है, सोया हुआ है, रोते रहते हैं। तभी बोले कि ऐसे मुझे जीव गोस्वामी ने भेजे सनातन और रूप सपने में आके बताए उनको लाने के लिए, तुम चलो। तभी उनको उठा के लेके आए श्री गोविंद, साक्षात गोविंद देव जी के दर्शन किए। कविराज गोस्वामी भी जब दर्शन किए, नरतम भी जब दर्शन किए, साक्षात गोविंद जी उनको दिखाई दिए, हमें तो दिखाई नहीं देते। साक्षात गोविंद जी के दर्शन किए, फिर पहले उनके आज्ञा था, आदेश था लोकनाथ गोस्वामी से दीक्षा लेना। अभी कंपटीशन लड़ाई है गुरु और शिष्य में। शिष्य का कहना है मैं महापुरुष का आज्ञा भी थे कि मैं उनसे ही दीक्षा लूंगा, और लोकनाथ गोस्वामी का कहना है कि मैं किसी को दीक्षा दूंगा ही नहीं। कंपटीशन अभी क्या करे। तो नरोत्तम दास ठाकुर कुछ सेवा करने का प्रयास करते हैं, उनकी कुटिया से बहुत दूर से उनकी कुटिया के परिक्रमा करते हैं, कुछ कुछ झाड़ू बुहारना, कुछ सेवा करना चाहते हैं, कुछ भी सेवा करते हैं, कुछ पानी लाना चाहते हैं। ऐसे नहीं, नल नहीं थे, सेवा का बहुत चांस था। अभी सेवा करने का क्या है, कोई नहीं, पंखा जलना भी नहीं है, अभी मैसेज करना भी नहीं, जो मशीन आ गया बहुत सारे अलग अलग, कोई सेवा नहीं है, सब सेवा छीना गया। कुकिंग करने का, रोटी बनाने का मशीन है, सब कुछ मशीन है। तो सेवा के लिए कुछ भी प्रयास करते हैं, झाड़ू लगाना, फूल तोड़ना, फूल उठाना, जल लाना, कुछ भी सेवा, जो भी सेवा करते माना करते हैं। लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर के हृदय में एक ऐसे प्लस पॉइंट था, वो सोचते थे कि मैं इस सेवा करने का, गुरुजी के इस सेवा करने का योग्यता मुझे नहीं है, और नीचे सेवा करना है, पहले फूल आदि लाना, जल लाना, फिर झाड़ू लगाना, ऐसे ऐसे। हमारा जैसे नहीं थे, मैं जैसे नहीं थे कि अहंकार, क्यों मेरे से, मैं इतना आग्रह से मैं सेवा करना चाहता हूँ, सेवा नहीं ले रहा, ऐसे नहीं। उनके अंदर यही था कि मैं ये सेवा करने की योग्यता नहीं, और नीचे और नीचे। तो कोई भी सेवा स्वीकार नहीं कर रहे हैं। तभी उन्होंने विचार किया कि ऐसे सेवा करूंगा जो जान भी नहीं पाएंगे, तो यही सेवा करने का लायक मैं। तो कहीं पे जाके दूर, उनके कुटिया के दूर जाके मल तक करते थे, दूर में जाके। उनके प्रेम विलास में कहना है कि उन्होंने कम से कम 3 घंटा 3 बजे जग जाते थे। शास्त्र में कोई दिन पहले रामाकांत प्रभु भी बताए, हम लोग भी पुराण में देखे कि 2 प्रहर 4 प्रहर में 2 प्रहर नहीं सोना चाहिए, पहले प्रहर और अंतिम प्रहर। 9 बजे से ज़्यादा सोने वाले जो है कम से कम मिनिमम 6 घंटा पहले प्रहर जगना चाहिए, अंतिम प्रहर जगना चाहिए। तो लोकनाथ गोस्वामी का वर्णन है कि अंतिम प्रहर में उन्हें जग जाते थे, शौच कार्य के लिए एक स्थान निर्दिष्ट में जाते थे। तो ऐसे ही हर दिन जाते, लेकिन नरोत्तम दास ठाकुर क्या करते हैं, जाके जहाँ शौच करते हैं उसे उठा के फेंक देते हैं, और गोबर लाकर एकदम गोबर और मिट्टी मिला, गोबर और जल मिला के पुताई करके एकदम साफ सुथरा करके रखते थे। जहाँ हाथ धोते थे वह मिट्टी के कंकर आदि है, एकदम अच्छे मिट्टी ला के रख देते थे। तो ऐसे ही उन्होंने करते थे सेवा, और ऐसे वर्णन है प्रेम विलास में, उस चारू को अपने छते में रखकर बड़े आनंदित होते थे, बड़े एक होते थे, तो छते में लगाते थे उस झाड़ू को, जो झाड़ू से सफाई करते थे। तो फिर लोकनाथ गोस्वामी को पता लग गया। पता लगने के बाद भी उन्होंने ये निश्चय नहीं कर पाया क्या किया जाए, ये पूछ भी नहीं सकते हैं। वो तो बोले कि कोई ब्रजवासी यदि करेगा तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा, किससे मैं पूछूं इस बात के बारे में कि कौन ऐसे कर रहा है। बहुत उनके अपने से लज्जा महसूस हो रही थी उनके मन में कि कैसे मैं पूछूं, लेकिन ये अच्छा भी नहीं है, कौन करता है। तो ऐसे विचार करते करते उनके मन में विचार आया कि मैं एक दिन छुप के रहूंगा, कौन करता है मैं देखूंगा। तो एक साल सेवा किया ऐसे। तो नरोत्तम दास लोकनाथ गोस्वामी गए, निर्दिष्ट स्थान में गए और शौच अधिकारी करके आ गए, आके दूर दूर पे छुपे रहे। इसी समय नरोत्तम दास ठाकुर से पहले जाके रहते थे, वो एक झाड़ी के बीच से नरोत्तम दास निकला, कौन है कौन है कौन है। तभी बोला प्रभु गुरुदेव मैं नरोत्तम हूँ। तो बोला तू ऐसे सेवा कर, तू राजकुमार होकर तू ऐसे सेवा करता है। उनकी प्रतिज्ञा जो है कि मैं कभी शिष्य नहीं बनाऊंगा, तुरंत हृदय इतना वैष्णव है, ऐसे कठिन नहीं होते हैं, वैष्णव का हृदय है तो पुष्प के समल कोमल भी हो सकते हैं, पत्थर से ज्यादा कठोर भी हो सकता है। उन्होंने तुरंत उनका हृदय पिघल गया और प्रतिज्ञा जो है अपने शिष्य नहीं बनाऊंगा तुरंत पानी में बहा गया और बोले तू ऐसे कार्य करे, तू राजकुमार होकर। तभी और बोले क्या भी मिट्टी हाथ में लग रहा था, बोले पानी डाल, पानी ढालो, पानी दिए और उनके बारे में पूछे, जमुना जी में स्नान किए, उनके नाम मंत्र नाम दीक्षा दिए और क्या उन्होंने बहुत सारे नियम सिखाया। हरिभक्ति विलास में दीक्षा लेने पहले बहुत नियम सिखाना चाहिए। द्वितीय दीक्षा होने के बाद यदि शिष्य गलती करते गुरु को भी कुछ दोष लगता है, इसके लिए उन्होंने नियम सिखाए पहले क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, क्या विधि है क्या निषेध है। उनमें से एक फल बताया कि बोला अल्प फल सुफल बहु फल विफल, मतलब थोड़ा शिष्य करोगे आप अच्छा से उसको देखभाल कर सकते हो, बहुत शिष्य बनाओगे आप ठीक से देखभाल नहीं कर पाओगे। तैसे कैसे सभी नियम को उन्होंने सिखाए, फिर उनको दीक्षा दिए और उन्होंने सेवा अधिकार दिए, गुरु जी की सेवा भी करते थे और उन्होंने इसी प्रकार और शास्त्र शिक्षा के लिए तीनों लोग श्रीनिवास आचार्य नरोत्तम और श्यामानंद प्रभु जीव गोस्वामी के साथ पढ़ते थे। तो उन्होंने इसमें उनको निर्देश हुआ कि आप जाओ, जीव गोस्वामी की इच्छा हुई कि तब ये जो भी ग्रंथ उन लोग लिखे थे गोस्वामी लोग, ये संस्कृत भाषा तो संस्कृत थे लेकिन लिपि जो है बंगाली लिपि में थी और इसका प्रचार भी करना था, धर्म प्रवर्तन करने के लिए चैतन्य महाप्रभु और सनातन के बताए थे, जिसे धर्म एक शास्त्र लिपि के अनुसार महाप्रभु ऐसे मुख से बोले लेकिन एक संस्था के लिए एक इसको गौड़ीय संप्रदाय के चलाने के लिए कुछ शास्त्र होना चाहिए उसके लिखे थे, तो इसको बंगाल में प्रचार भी करना था, उसको सुरक्षा भी करना था। इसके लिए जीव गोस्वामी विचार किए, वो वर्तमान रूप गोस्वामी जाने के बाद ये वैष्णव के आचार्य थे, तो उन्होंने विचार किए कि इसको सुरक्षा होना चाहिए, प्रचार होना चाहिए और इस गौर देश में प्रचार करने के लिए तीनों का अवतरण हुआ। लेकिन तीन की मन में यही इच्छा थी कि मैं हम तीनों आजीवन वृंदावन में रहूंगा, लेकिन
जीव गोस्वामी की आज्ञा हुई, तो सभी से आशीर्वाद लिए। लोकनाथ गोस्वामी वृद्ध हो गए थे, सेवा करने का कोई नहीं है, लेकिन प्रचार कार्य के लिए फिर भी जब जीव गोस्वामी बताए तो उनको एक वृद्ध हो गए, एक अकेले एक ही शिष्य है, गुरु जी के पास में तो रहना चाहिए, लेकिन महापुरुष की प्रचार कार्यों में इतने ही है कि उनको जाने का अच्छा आशीर्वाद दे दिए और गए बंगाल में जाकर उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किए। उन्होंने खेतरी उनके जन्म स्थान पर गए, श्रीनिवास जाजीग्राम में गए और श्यामानंद प्रभु गए उड़ीसा और मेदिनीपुर प्रचार किए। तो ये ग्रंथ तो चोरी हो गया था, उधर श्रीनिवास रुके थे, दोनों को भेज दिए थे। तो जब उन्होंने प्रचार कार्य शुरू किया, प्रचार करते करते धीरे 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 सभी रामचंद्र कविराज भी गए, दोनों मिलके प्रचार कर रहे थे और ब्राह्मण लोग को भी दीक्षा देने लगे। खेतरी में विग्रह प्रतिष्ठा, चैतन्य महाप्रभु, राधा कृष्ण राय, श्री कृष्ण, राधा ब्रजमोहन, राधा रमन, राधा कांत, छह विग्रह की प्रतिष्ठा की है। तो जब प्रतिष्ठा के समय हो गया, समय आ गया, लेकिन महाप्रभु के विग्रह बन ही नहीं पा रहा था, महाप्रभु के विग्रह बना ही नहीं पा रहे थे, कोई भी नहीं बना पा रहा था। तो समय निकट आ गए, बहुत चिंतित हो गए नरोत्तम दास ठाकुर। जब दारू विग्रह बनाना था लकड़ी से, नीम लकड़ी से, कलयुग में जो है जगन्नाथ जी है और चैतन्य महाप्रभु का विग्रह, ज्यादा पुराने विग्रह जो भी है वो धातु के नहीं है, नीम के है। महापुरुष स्वयं आज्ञा दिए ईशान ठाकुर आदि को, बोले कि मैं जहाँ जन्म लिए इसे नीम वृक्ष से मेरा विग्रह बना के विष्णु प्रिया देवी को अर्पण करो और मैं साक्षात उसमें मैं रहूंगा। तो नीम विग्रह से बनाने जा रहे थे, कितना भी प्रयास करते विग्रह बना ही नहीं। नरोत्तम दास ठाकुर बहुत चिंतित हो गया, तो महापुरुष स्वप्न में आए, बोले विप्रदास के धान की जो गोडाउन है उसमें बांस से बनाते, गोल गोल बनाते, उसमें धान रखते हैं, शस्यों धान रखते हैं, इसके गोडाउन में मैं हूं, तुम जाके वहां से मुझे उद्धार करो। लेकिन उसी धान के गोडाउन में महापुरुष है, तो महापुरुष सुरक्षा कौन करते हैं, भगवान की सुरक्षा कौन करते हैं, अनंत शेष उधर बैठे थे, कोई नहीं जा पा रहा, बड़े बड़े नुकसान होने वाले थे, कोई सालों से उसके अंदर कोई चाहते ही जाएंगे तो इतनी फुतकार करते हैं, सभी डर के मारे भागते हैं। तो जो पकड़ने वाले हैं शाहपुरी लोगों को बुलाए, किसी का मंत्र तंत्र काम नहीं किया, वो भी जब निकट जाते बहुत ज्यादा फुतकार करते, वो भी भाग जाते हैं। तो बोले मेरे इतने लाखों रुपये की सामान मेरा उधर है, लेकिन गया। तभी महापुरुष सुने कि विप्रदास ने, नरोत्तम दास ठाकुर सुने स्वप्न देखे, तो बोले कहाँ है विप्रदास के घर। तो विप्रदास के घर बताए, उनके घर गए, उनको उनके ख्याति फैल गया था, बहुत आदर करके उनको बैठाए और बैठाने के बाद बोले कि इसलिए मैं आया हूँ, तुम्हारा गोडाउन में जाना है, धान शस्यों धान आदि जो रखे हो उस गोडाउन में मुझे जाना है। नहीं नहीं आप नहीं जा सकते उसमें, आप किसी भी मत में हम आपको नहीं जाने देंगे उधर, क्योंकि अजागर सड़को है, कोबरा विशाल कोबरे है, कौन जाने नहीं दूंगे। तभी बोले नहीं मुझे तो जाना है, उसमें कुछ नहीं होने वाला। उनको समझाए, इतने समझाने के बाद भी नहीं समझे, उन्होंने गए जाके देखा कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जब मतलब महापुरुष तो है लेकिन जो कोबड़े थे अजगर थे वो नहीं है, अनंत शेष भाग गए। तो बोले जिसको हैंडओवर करना था मालिक आ गया, हमारा क्या काम है, चलो उनको दे देते। तभी जाके देखे धन की उसमें गोडाउन में उनको महापुरुष मिल गए, महापुरुष कीर्तन करके महापुरुष को लाए। गौर पूर्णिमा के समय जाह्नवी माता, गौर देश के सभी वैष्णव लोग गए
वैष्णव के आदर तब से नरोत्तम दास ठाकुर कोई किलोमीटर जाके उनको पैदल जाकर उनका स्वागत करते थे। विदाई के समय इस समय विशाल महा उत्सव हुए, जानवा माता पूरा उनकी रसोई की व्यवस्था देख रही थी, रसोई खुद कर रही थी। श्रीनिवास आचार्य विग्रह प्रतिष्ठा में ऐसे विशाल विशाल महोत्सव हुआ और उसमें कीर्तन में स्वयं स्वयं गौर औरंग सब परिकर और भव्य रूप से गौर पूर्णिमा कोई नहीं मनाते थे, इस नरोत्तम दास ठाकुर ने शुरू किए। तो इसमें महापुरुष स्वयं सब परिकर महापुरुष प्रकट हुए, महापुरुष के दर्शन किए और महाकीर्तन किए तो फिर अंतर्धान हो गए। इसी प्रकार राधा कृष्ण भी एक दिन कीर्तन में राधा कृष्ण साक्षात राधा कृष्ण प्रकट हो गए थे ऊपर। से प्रचार कार्य किए, सभी विग्रह विग्रह की सेवा रामचंद्र कविराज रहते थे, उदारी श्रीनिवास आचार्यों के शिष्य है, उन्हें मांग के ले लिए थे रामचंद्र कविराज को, जब मेरे साथ रहने दे दीजिए। तभी रहते हैं, उनकी भजन की ये है, मंगल आरती दर्शन करते हैं, अपने अपने कुटिया में जाकर 100,000 नाम करते हैं, कोई बात नहीं करते हैं, बिल्कुल प्रेम विरस में उल्लग है कि बैठ के 100,000 नाम जपते हैं। नाम जप के बीच में बाएं हाथ में जो छोटा मशीन नहीं रखते थे, यही एक मन हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो दोपहर में जाके भजन करते थे, सुबह भजन, इसी प्रकार उनकी निष्ठा भजन करते थे। अपने पत्ताल अपने शिष्य को बोले किसी को नहीं देना, भजन करके हरिति की खाते थे, रामचंद्र को व्यास पान खाते थे। इसी प्रकार इनकी भजन की पद्धति सुंदर भाव से अपने ध्यान पूर्वक जप करते थे। फिर अलग अलग प्रचार कार्यों में एक बार रामकृष्ण और हरिराम दोनों दुर्गा पूजा से पहले बकरे लेके जा रहे थे। तो ये दोनों का शास्त्र चर्चा कर रहे थे, रामचंद्र कविराज और नरोत्तम दास ठाकुर स्नान के लिए जा रहे थे, स्नान करने जा रहे थे। इसी समय ये दोनों शास्त्र सुने और उन्होंने रामचंद्र कविराज यदि बोले तो उनको समझाए, तो समझाने के बाद उन लोग समझ गए और जब बकरा लेके जा रहे छोड़ दिया। पिताजी को पता चला और इनके साथ में खेतरी में चले गए, वो नहाने के लिए आए थे, पद्मा नदी नहाने के लिए आए थे नरोत्तम और रामचंद्र कविराज, गए और शास्त्र चर्चा ही उनको समझाए, वैष्णव धर्म दोनों वैष्णव की अनुगामी हो गया। तब इनके पिताजी बहुत भवानी बहुत बड़े भक्त थे और वो हमेशा पशु बलि देकर भवानी पूजा करते थे। तब उनको पता चला, बाद में ये दोनों गए तिलक आदि धारण करके गए, पिताजी बहुत नाराज हो गए, क्या ब्राह्मण से बड़े वैष्णव है, या इससे बहुत चर्चाएं हुई, पंडित लोग लाए उसको भी हरा दिए। तो मिथिला के एक पंडित थे उनके साथ भी चर्चाएं हुई, उनको भी हरा दिए, तो बाद में वो बिल्कुल अपने पंडित के कारण भिखारी बन गए वो मिथिला के पंडित। इसी प्रकार उनके पिताजी बड़े नाराज हो गए, तो ऐसे ब्राह्मण को दीक्षा देने लगे हरिराम और राम हरिराम रामकृष्ण दोनों भी प्रचार करने लगे। इसी प्रकार गंभीला में गए, ये भी बड़ा शास्त्र में पंडित थे, गंगा नारायण चक्रवर्ती बड़े शास्त्र में पंडित थे, शिक्षा वृत्ति करते थे। ये दोनों को जब मिले हरिराम और रामकृष्ण से तो प्रभावित हो गए। तब नरोत्तम दास ठाकुर से मिले, गंगा नारायण चक्रवर्ती भी एक कट्टर व्यक्ति थे, ये भी भक्त हो गए और बहुत अच्छे भक्त हो गए। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की बहुत सारी लीलाएं हैं। तो प्रचार करते करते उन्होंने रामचंद्र कविराज चले गए, फिर श्रीनिवास आचार्य चले गए। तो हम जो भजन गाया ये श्रीनिवास आचार्य के त्रिभाव तिथि में
नर्तम दास ठाकुर गाए, जे आनिलो प्रेमधनो करुणा प्रचुर। तो
जबी दोनों का अंतर्धान के बाद उन्हें सुने तब बहुत बहुत अधीर हो गए, रोने लगे। एक दिन सुबह मूर्छित हो गए, रोने लगे, आंखों से अविराल अश्रु धारा बहते हैं। तब ऐसे करके जब शिष्य लोग बहुत दुखी हो गए तब उनको भी समझाए और समझा के इसी प्रकार आए खेतरी में। खेतरी में आकर रहकर उन्होंने उनके विचार किया तो ऐसे भजन किए, ऐसे भजन में परिपक्व, ऐसे नित्य परिकार है जो कि जब इच्छा चलो। तो उन्होंने मन ही मन विचार किया कि मुझे भी जाना है। इसके बीच में भी बहुत बहुत सारे कथाएं है, मैं सोचता हूँ कर पाएंगे कि नहीं। तो ऐसे विचार किए, विचार करके खेतरी में आए, कीर्तन नाम संकीर्तन हुआ, सभी भक्त लोगों को बुलाए, उपदेश आदि दिए कैसे क्या करने आगे। तब ऐसे लेकर उन्होंने गए बुधि जो गोविंद कविराज रहते थे बुधिर में गए। उधर जाकर नर्तम दास ठाकुर जाके एक रात दिन महासंकीर्तन हुआ, महासंकीर्तन हो गए। यह से उन्होंने आए गंभेला में। गंभीला में आके ये गंगानंदन चक्रवर्ती के घर है। तो और जो रामचंद्र कविराज और गोविंद कविराज बुधिर में, तो तेलिया बुधिर बोलते हैं, ये रहते थे इधर आगे आकर नर्तम दास ठाकुर बोले कि मुझे गंगा स्नान करना है। गंगा स्नान करके दोनों शिष्य गंगा नारायण आदि को बोले कि मेरे शरीर में गंगा जल दो। जब ही गंगा जल दिए तो प्रेम की प्रभाव से उनके शरीर पिघलने लगे और दूध जैसे सफेद उनके शरीर से निकालने लगे। देखकर चकित हो गए और बोला मेरे शरीर को मार्जन करूँ। गंगा जल दे रहे थे और मार्जन कर रहे थे और मिलते जा रहे थे, और मिलते जा रहे थे। ऐसे मिलते मिलते ये करते ही गंगा में एक तुरंत लहर आया, लहर से पूरा मिल गए। और वह से थोड़ा सा दूध लाकर एक समाधि दिए हैं, उसको बोलते हैं दुग्ध समाधि, दुग्ध समाधि। तो ये अभी भी गंभीला में आप कभी जाएंगे तो आप लोग गंगानारायण चक्रवर्ती की जो ठाकुर जी है और ये जो उनकी दुग्ध समाधि वहाँ पे है, आप लोग जाके दर्शन कर सकते हैं। और जो महाप्रभु थे उनके खेतरी में, वो महाप्रभु भी गंभीला में हैं। उनके दर्शन केवल गौर पूर्णिमा के दिन और नरोत्तम दास ठाकुर के त्रिभाव तिथि आविर्भाव तिथि ऐसे दर्शन होते हैं, दर्शन नहीं होते हैं। जो उनके सेवित किया हुआ जो विप्रदास के घर पे जो महाप्रभु थे, वो महाप्रभु अभी भी गंभीला में हैं। तो कोई भी श्री विग्रह हो अभी वो स्थान में नहीं है, खेतरी में कोई भी विग्रह नहीं है। जो छह विग्रहों में से कहाँ कहाँ गए पता नहीं है, लेकिन एक राधा ब्रजमोहन वृंदावन में ज्ञान गुदरी में अभी है महाप्रभु। तो ऐसे बोलते हैं कहीं कहीं पे है। और उनके घर पे खेतरी में उनके इष्टदेव जो उनका पिताजी सेवा करते नारायण, अभी वो नारायण चतुर्भुज धरे नारायण के घर पे हैं, और बहुत बहुत विशाल मेला लगता है, बहुत विशाल लाखों लाखों लोग होते हैं उनके जन्म स्थान में, उनके जन्म तिथि माघ पूर्णिमा के दिन विशाल मेला लगता है। तो एक दुर्भाग्य की बात है कि उस दिन मछली की भोग लगाते थे, सहजी वैष्णव लोग मछली की भोग लगाते थे, इसकोन विरोध किया, विरोध करने से कि भक्त वरिष्ठ भक्तों को जेल भी जाना पड़ा था, और अच्छे प्रयास करने से उसका परिणाम मिलता है, उस विरोध के परिणाम में अभी बंद हो गया, अभी बंद हो गया। अभी इष्कन ने जमीन भी लिए हैं, अभी वो स्थान है जहां पे वो भजन लिखते थे, और प्रेम यदि कोई चाहते हैं तो बाबा जी बोलते हैं कि दो अना में प्रेम मिलता है, एक अना में नरोत्तम दास ठाकुर का प्रार्थना और एक अना में उनकी प्रेम भक्ति चंद्रिका। यदि किसी को सरलता से बहुत शॉर्ट में समझना है वास्तव में जीवन की मूल क्या है, वास्तव में क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, कैसे भजन करनी चाहिए, कैसे भगवान में आसक्ति होनी चाहिए, ये केवल प्रेम जब भक्ति चंद्रिका पढ़िए, आपको प्रेम जब प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला भजन कौन सा है बताइए, कौन सा है प्रेम भक्ति चंद्रिका का पहला भजन कौन सा है, शब्द हर दिन गाते हैं, श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा बंध मुई सावधान माते, ये है प्रेम भक्ति की पहले भजन। श्री गुरु चरण पद्म, श्री गुरु कौन श्री गुरु है, जी जो गुरु के पास ये प्रेम संपद रूपी श्री है वही श्री गुरु के चरण पद्म, वही श्री गुरु, श्री गुरु यही श्रीयुक्त तो है, प्रेम संपद श्री गुरु के पास है वही श्री गुरु की चरण पद्म। इसी प्रकार नरोत्तम दास ठाकुर की त्रिभाव आँच है, आप लोग ब्रजमोहन में या राधा गोकुलानंद में उनके थोड़ा समाधि बनाए हैं, और कभी आप लोग जाएंगे जब एक नामहट्ट से एक परिक्रमा निकालते हैं गौर मंडल, गौर पूर्णिमा के बाद में एक परिक्रमा निकालते हैं गौर मंडल, मतलब पश्चिम बंगाल के अंदर जितने चैतन्य महाप्रभु परिकारों के स्थान है उनके दर्शन होता है गौर मंडल, तो उसमें आप लोग जाएंगे, जहाँ एक पंडित आ रहा था कुमार पारा उसके नाम है, और श्रीनिवास आचार्य इसमें जो रामचंद्र कविराज के घर वो बुधिर वो भी है, ये गंभीला भी है, सभी स्थान वो अभी इस बार हम गए थे जहाँ पे दुग्ध समाधि जो घाट में स्नान कर रहे थे उसी घाट में हम गए पानी पिए गंगा जी की, एकदम अभी गंगा जी पे हैं, तो ये सभी स्थान हैं, आप लोग कभी सौभाग्य होगा तो उसी स्थान परम पवित्र स्थान को दर्शन कर सकते हैं उनकी समाधि को। तो ऐसे नरोत्तम दास ठाकुर हैं, आप लोग कम से कम एक दो भजन प्रेम भक्ति चंद्रिका और प्रार्थना से तो देखिएगा, बहुत हर भजन बहुत ही निताय पाद कमलो कोटि चंद्र सुशीतलो, ये सभी नरोत्तम दास ठाकुर के भजन हैं। ठीक है, आप यहाँ पे विराम देते हैं, किसी को जिज्ञासा प्रश्न है हरे कृष्ण, तो ऐसे भजन करना है जब इच्छा चल दे, तो गंगा जी से प्रेम प्राप्त हुआ था पद्मा से और गंगा जी में विलीन कर दिया, तो ये
नित्यानंद रूप आवेश अवतार प्रेम अवतार हैं। हरे कृष्ण बोले। हाँ बिल्कुल आपने बहुत अच्छी बात बताई कि आस नर्तम दष्टगर का भजन संध्या होना चाहिए चाहिए चाहिए। हाँ यह करना ही चाहिए आस तो नर्तम दष्टगर के भजन संध्या। तो आज तो गोपी गीत भी है ना शाम को, वो तो पता नहीं हमें कब के टाइम शेड्यूल शेड्यूल पता नहीं। जय नरोत्तम दास ठाकुर के, जय श्री प्रभुपाद के, संत भक्त लोकनाथ गोस्वामी के, जय राधा ब्रज मोहन के, समेत गौर भक्त नीताय गौर प्रेमानंदी।